मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं BA प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। इसके सिलेबस के अंतर्गत सेकेंड यूनिट है भारतीय समाज का स्वरूप, जिसके अंतर्गत प्रथम अध्याय है भारतीय समाज के स्वरूप का परंपरागत आधार, जो निम्न प्रकार है। परंपरागत आधार की भूमिका निम्न प्रकार है। डॉक्टर ललन जी गोपाल ने उचित ही लिखा है कि भारत का अतीत उसके वर्तमान में जीवित है। भारतीय समाज और संस्कृति की विभिन्न शताब्दियों का इतिहास एक ही सूत्र में गुथा है। रोम, यूनान और बेबीलोनिया की भव्य संस्कृतियां नष्ट होकर अतीत की कथा मात्र रह गई, पर इन सब के विपरीत आधुनिक भारत के थे। यही कारण है कि आज भी भारतीय सामाजिक संगठन में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, पंचायत, विवाह और धर्म अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। यद्यपि भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर इनके रूप या स्वरूप कुछ बदल भी गए हैं, फिर भी आधार वही हैं और वही रहेंगे भी। स्पष्ट है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था अति प्राचीन एवं गौरवपूर्ण है और वह अपने ज्ञानमय प्रकाश से प्रथमवर्ष मानवता को निरंतर राह दिखलाते आई है। आज ही भारत इस गौरव से वंचित नहीं है। विश्व के नाना देश जब आज युद्ध और शांति प्रतियोगिता और आपसी तनाव के बीच फंसकर त्राही कर रहे हैं, तब भी भारत शांति और विश्व प्रेम के अभय मंत्र का पाठ उन्हें पढ़ा रहा है और उन्हें हाथ पकड़कर सही रास्ते की ओर उन्मुख करने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में इसके लिए अनेक गुणों की आवश्यकता होती है और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इन गुणों का अभाव नहीं, प्रचुरता रही है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की यही सबसे महान विशेषता है। इसके पूर्व की भारतीय सामाजिक संगठन का अध्ययन किया जाए, सामाजिक संगठन का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। हेडिंग: सामाजिक व्यवस्था क्या है। समाज एक अखंड संगठन या व्यवस्था नहीं है, यह अनेक इकाइयों के सहयोग से बनता है। दूसरे शब्दों में समाज की कुछ निर्मायक इकाइयां होती हैं। ये इकाइयां समाज में पाई जाने वाली समिति, संस्था, वर्ग, जाति आदि होती हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई का समाज में एक निश्चित स्थान और एक निश्चित कार्य होता है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा या संयुक्त परिवार का भारतीय समाज में एक निश्चित स्थान तथा कुछ निश्चित कार्य निर्धारित हैं। इस निश्चित कार्य और निश्चित स्थान के आधार पर जाति प्रथा और संयुक्त परिवार किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंध है। इसी प्रकार समाज की अन्य इकाइयां भी एक दूसरे से संबद्ध होती हैं और इनके फलस्वरूप उनका एक संगठनिक व संतुलन प्रकट होता है। इसी को सामाजिक संगठन या व्यवस्था कहते हैं। और भी स्पष्ट शब्दों में सामाजिक संगठन या व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें कि समाज की विभिन्न इकाइयां अपने अपने कार्यों के आधार पर एक दूसरे से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप एक संतुलित स्थिति उत्पन्न करते हैं। श्री जोन्स ने सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है, सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज की विभिन्न इकाइयां आपस में तथा पूरे समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से संबद्ध होती है। हेडिंग: भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अभिप्राय। हम ऊपर कह चुके हैं कि सामाजिक संगठन वह स्थिति है जिसमें कि समाज की विभिन्न इकाइयां अपनी अपनी पूर्व स्थिति पर रहते हुए समाज द्वारा निर्धारित कार्यों के आधार पर एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध रहती हैं कि समाज में एक संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी संदर्भ में भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था के अभिप्राय को भी स्पष्ट किया जा सकता है। भारतीय सामाजिक संगठन का अर्थ भारतीय समाज में पाई जाने वाली उन संतुलित या व्यवस्थित स्थिति से है जो कि समाज की विभिन्न निर्मायक इकाइयों से अपने अपने स्थान पर रहते हुए पूर्व निश्चित कार्यों को करने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय सामाजिक संगठन उस व्यवस्था की ओर संकेत करता है जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन के स्थापित तथा मान्य उद्देश्यों और आदर्शों की प्राप्ति संभव होती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय समाज ने विभिन्न उपव्यवस्थाओं को प्रतिस्थापित किया है, जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था इत्यादि। इन उपव्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की केंद्रीय धुरी है, क्योंकि इसके द्वारा न केवल समाज को कुछ निश्चित वर्णों में बांटा गया है बल्कि सामाजिक व्यवस्था व कल्याण को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य कर्मों को भी निश्चित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था समाज में सरल श्रम विभाजन की व्यवस्था करती है। आश्रम व्यवस्था द्वारा जीवन को चार स्तरों में बांटकर और प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों के पालन का निर्देश देकर मानव जीवन को सुनियोजित किया गया है। जाति प्रथा मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक घेरे रखती है। संयुक्त परिवार के कार्यों का नियोजन और निर्देशन करता है। विवाह मनुष्य को पूर्णता प्रदान करता है और गांव पंचायत गांव के सामूहिक जीवन का प्रतीक है। ये सभी भारतीय सामाजिक संगठन के आधार है और इन सब का सम्मिलित रूप ही भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था है। परंपरागत आधार के अंतर्गत प्रथम आधार है वर्ण व्यवस्था, जो निम्न प्रकार है। हेडिंग, वर्णाश्रम का अर्थ। संसार की अन्य अनेक संस्कृतियों में भौतिकतावाद पर अत्यधिक बल देकर जीवन के आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा की गई है, परंतु जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, भारतीय समाज में भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद में एक अपूर्व समन्वय स्थापित किया गया है। भारतीयों ने सदैव ही परमार्थिक और व्यवहारिक का अंतर समझा है। परमार्थिक सुख को सर्वोच्च सुख मानते हुए भी वे जानते थे कि इस लोक के सुखों और कल्याण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हिंदू जीवन दर्शन में सांसारिक अभ्युदय या समृद्धि और आध्यात्म भावना की समन्वय का परिणाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था जिसे वर्णाश्रम कहते हैं। यह वर्णाश्रम दो शब्द वर्ण तथा आश्रम से मिलकर बना है और इनमें से प्रत्येक शब्द हिंदू सामाजिक व्यवस्था के दो पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में वर्ण और आश्रम समाज रूपी भवन के दो सुदृढ़ आधार या स्तंभ थे जिन पर आर्य लोगों का व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन आधारित था। और भी स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि इस देश के साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने समष्टि और व्यष्टि के कल्याणार्थ वर्णाश्रम व्यवस्था को जन्म दिया। वर्णाश्रम का तात्पर्य है वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था, इसे वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। धर्म का तात्पर्य यह नैतिक कर्तव्य या जीवन में व्यवहारिक नैतिक नियम है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज के सदस्यों को चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था और प्रत्येक वर्ण के लिए कुछ नियमों और कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया गया था और यह प्रत्येक वर्ण से आशा की जाती थी कि वह उन नियमों को अपना धर्म या नैतिक कर्तव्य समझकर उनका पालन करेगा। यही वर्ण व्यवस्था या वर्ण धर्म था। जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज को चार भागों में विभाजित कर दिया गया, उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन को चार श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। अर्थात आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन के चार विभागों या स्तरों की व्यवस्था थी। चार वर्णों की भांति आश्रम भी चार माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस प्रकार हिंदू सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला वर्णाश्रम व्यवस्था अर्थात वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था है। एक लेखक ने सच ही लिखा है कि वर्णाश्रम धर्म वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण हिंदू सामाजिक व्यवस्था घूमती है। वर्णाश्रम व्यवस्था को धर्म की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि चारों वर्ण इस व्यवस्था के अनुसार चलने या अपने को ढालने के काम को अपना परम और पवित्र कर्तव्य समझे। आगे के पृष्ठों में वर्ण धर्म तथा आश्रम व्यवस्था के महत्व की अलग अलग विस्तृत विवेचना की गई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्णाश्रम धर्म एक धुरी की भांति क्यों या कैसे है। यहाँ तो इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक संगठन, सुव्यवस्था एवं समृद्धि के हेतु समाज के चार भागों में बांटना और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत करने के लिए जीवन को चार भागों में विभाजित करना। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य एवं महत्व इस दृष्टि से व्यक्तिगत या वर्ण व्यवस्था में आधारभूत प्रेरणा का स्वरूप सामाजिक था। वास्तव में दोनों ही एक प्रकार के धर्म हैं और वह इस अर्थ में है कि इनमें से प्रत्येक व्यवस्था के आदर्श के अनुसार प्रत्येक समूह या व्यक्ति के से कुछ निश्चित सामाजिक नैतिक कर्तव्यों का पालन करने की आशा की जाती थी, जिससे कि आत्महित के साथ साथ सामूहिक एवं सामाजिक हित की अभिवृद्धि संभव हो सके। इस दृष्टि से ये दोनों ही व्यवस्थाएं व्यक्ति तथा समाज के संगठन व समृद्धि से संबंधित हैं। इसलिए इन दोनों को एक संयुक्त शब्द वर्णाश्रम व्यवस्था या धर्म द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है और दोनों को समष्टि के अंतः संबंधित तथा अंतः एकीकृत भाग के रूप में देखा और अभ्यास में लाया जाता है। भारतीय आदर्श के अनुसार व्यक्ति तथा समाज में सर्वांगीण विकास के लिए वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करना आवश्यक है। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करके ही व्यक्ति अपनी तथा समाज की प्रगति में योग दे सकता है, क्योंकि वर्ण धर्म के पालन के विभिन्न समूहों में आवश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाता है और प्रत्येक वर्ण सामूहिक एवं सामाजिक हित के अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील होती है। और आश्रम धर्म के पालन के द्वारा मनुष्य के वे गुण एवं शक्तियाँ उत्पन्न होती है जिनकी सहायता से व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत तथा जीवन में जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को ही नहीं ही प्राप्त नहीं करता बल्कि सामाजिक कल्याण और सेवा से संबंधित अनेक कार्यों को सुचारू रूप से संपादित कर सकता है। इसलिए यह व्यवस्था धर्म है और इस धर्म का पालन करके पालन सबके लिए आवश्यक व आदर्श है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्य संस्कृति के मूल तत्वों में जो समाज चार आश्रमों का है वही स्थान आज चार वर्णों का भी है। इस अध्याय में हम केवल वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में अगले अध्याय में आश्रम व्यवस्था एवं संबंध में पृथक पृथक विवेचना करेंगे। हेडिंग वर्ण व्यवस्था। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था इस देश की संस्कृति तथा सामाजिक संगठना का प्राण थी, परंतु यह व्यवस्था आज की जाति व्यवस्था से बिल्कुल ही भिन्न थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज परंपरागत चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। समाज को केवल चार भागों में ही विभाजित करने का एक वैज्ञानिक उद्देश्य भी ढूंढा जा सकता है, ज्ञान रक्षा जीविका तथा सेवा मनुष्य की चार स्वाभाविक इच्छाएं हैं। आर्य सामाजिक व्यवस्था के विशेषज्ञों का कथन है कि इन्हीं चार इच्छाओं का मानव प्रवृत्तियों की पूर्ति के लिए ही समाज चार भागों में विभाजित किया गया था। इस प्रकार समाज को चार भागों में विभाजित करने की परंपरा केवल भारतवर्ष में ही अनोखी नहीं है बल्कि अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी इसका दर्शन स्पष्ट होता है। हेडिंग वर्ण का अर्थ। प्राय जाति और वर्ण इन दो अवधारणों को लोग एक मान लेते हैं और एक ही अर्थ में इन दोनों का प्रयोग भी करते हैं, परंतु वास्तव में यह गलत है और दोनों अवधारणा एक दूसरे से भिन्न है। वर्ण शब्द का अर्थ रंग और वर्ण दोनों ही होता है। अधिकतर विद्वान जो भारतीय जाति प्रथा के उत्पत्ति में प्रजातीय सिद्धांत को मानते हैं वर्ण शब्द को रंग के ही आधार में प्रयोग करते हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से वर्ण शब्द वृक्ष वर्णे या वरी धातु से बना है जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। हो सकता है कि यह चुनाव पेशे से चुनाव की ओर इशारा करता है और इस रूप में वर्ण का अर्थ उस समूह से था जो कि एक विशेष प्रकार के पेशे को अपनाता था या समाज द्वारा निर्धारित कुछ निश्चित कार्यों को करता था। सांख्य दर्शन आदि में वर्ण शब्द को एक विशेष प्रकार के रंग से संबंधित कर दिया गया है और प्रत्येक वर्ण का एक विशेष प्रकार का रंग माना गया है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रूप या रंग का नाम ही वर्ण है। इसलिए पुराणों में भी कई जगह शुक्र ब्राह्मण रक्त क्षत्रिय पीत वैश्य और कृष्ण शूद्र लिखा गया है मिलता है। इसके कारण के विषय में विस्तृत विवेचना हम आगे करेंगे। डॉक्टर शर्मा ने लिखा है कि वैदिक साहित्य में वर्ण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों और इनके धर्मों एवं गुणों के दर्शन के अर्थ में ही किया गया मालूम पड़ता है। दूसरी बात यह है कि समाज को चार हिस्सों में बांटने की प्रणाली को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। चूँकि वैदिक काल के लोगों के लिए यह संभव न था कि वे शारीरिक लक्षणों को ठीक माप सकें, इसलिए यह आशा नहीं की जा सकती है कि वर्ण का अर्थ रंग या प्रजाति विभिन्नता से हो सकता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्ण शब्द का मुख्य रूप से कर्मों और गुणों का वर्णन करने उनको स्वीकार करने या वर्ण एक वर्ण को दूसरे वर्ण गुणों और कर्मों को निभाने की प्रेरणा के लिए ही प्रयुक्त हुआ। श्री यास्कराचार्य ने निरुक्त में वर्ण शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति वर्ण अर्थात चुनाव करने का अर्थ देने वाले ब्री धातु से हुई है। अर्थात वर्ण वह है जिसको व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है। ऋग्वेद के कुछ स्थानों पर वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया गया है। सांख्य दर्शन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रूप या रंग का नाम ही वर्ण है, इसलिए पुराणों में भी कई जगह शुक्ल ब्राह्मण रक्त क्षत्रिय पीत वैश्य कृष्ण शूद्र लिखा मिलता है। श्री काने के अनुसार वर्ण शब्द का प्रयोग गौर वर्ण आर्यों तथा कृष्ण वर्ण दासों के लिए होता था। बाद में इनका प्रयोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों सामाजिक वर्गों के लिए किया जाने लगा। मोटे तौर पर यह हम कह सकते हैं कि वर्ण सामाजिक विभाजन की वह आधार व्यवस्था है जिसका आधार जन्म उतना नहीं जितना कि कर्म का विभाजन रंग के आधार पर नहीं हो सकता। इस विभाजन का आधार तो गुण प्राकृतिक स्वभाव और प्रवृत्ति ही हो सकता है। सामाजिक व्यवस्था और संगठन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि सामाजिक कार्यों का विभाजन किया जाए जिससे कि एक के कार्यों में दूसरा आवश्यक रूप से हस्तक्षेप न करे। इसी उद्देश्य कर्मों और गुणों के आधार पर समाज के सदस्यों की विभिन्न समूहों में बांट देने की जो व्यवस्था चालू की गई उसी को वर्ण व्यवस्था की संज्ञा दी गई। अतः वर्ण व्यवस्था सामाजिक कार्यों के कर्तव्यों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने की वह व्यवस्था है जिसका आधार प्राकृतिक प्रभाव व गुण है। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की सामाजिक व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। निम्नलिखित विवेचन से यह बात और स्पष्ट हो जाए। हेडिंग वर्ण में निहित दर्शन। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज को चार भागों में बांटा गया है। उनमें अंतर्निहित दर्शन क्या है इस विषय में अनेक अन्वेषण विद्वानों द्वारा किए गए। उनमें से एक महत्वपूर्ण दर्शन या दृष्टिकोण या विचार यह है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, इसलिए यहाँ प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। यह मोक्ष कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है और वर्ण धर्म का यथोचित पालन उनमें से एक तरीका है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के लिए कुछ कार्यों व कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था और इस बात पर बल दिया गया था कि इन कर्तव्यों का पालन ही प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक धर्म है और जिस धर्म को उचित ढंग से निभाता है वह मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होता है। वर्ण व्यवस्था में अंतर्निहित दूसरा विचार यह है कि समाज में संगठन व सुव्यवस्था कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न समूहों में होने वाली अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया जाए और प्रत्येक समूह के कार्यों का निर्धारण कर दिया जाए ताकि कोई भी समूह दूसरे के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप न कर सके और अपने अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत क्रियाशील रहते हुए आत्महित के साथ साथ सामूहिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा संभव हो सके। इस अर्थ में वर्ण व्यवस्था समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए आयोजित एक व्यवस्था कही जा सकती है। श्री पांड्या के अनुसार जीवन के लिए संघर्ष नहीं है किंतु प्रतिस्पर्धा का अभाव हिंदू संस्कृति का ध्येय है और इसी के उपाय स्वरूप वर्ण व्यवस्था का विधान है, जिसका मतलब सांसारिक संपत्ति के लिए अपने वर्ण की यानी पैतृक आजीविका को अपनाकर उससे संतुष्ट रहना और उसके द्वारा जो संपत्ति प्राप्त हो उसे आत्महित के साथ साथ सामूहिक एवं सामाजिक हित की अभिवृद्धि के लिए दूसरों में वितरण करना मनुष्यों के लिए पैतृक संप्रदाय कितना उपयुक्त है, उसे अपनाने में कितनी कठिनाई या अशांति से छुटकारा मिल जाता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि यदि किसी में विशेष योग्यता हो तो वह क्या करे। इसका उत्तर यह है कि अर्थ साधन के लिए वर्ण व्यवस्था का नियम है, धर्म के साधन के लिए नहीं। एक ब्याध तथा एक जुलाहा भी तत्ववेत्ता धर्मपरायण हो सकता है परंतु आजीविका के लिए वह अपने द्वारा निर्धारित वर्ण निर्धारित कार्य ही करे अर्थात निर्धारित कार्य ही करे। इससे संबंधित एक श्लोक निम्न प्रकार है। संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्योध्यने जनपदायो। अर्थात स्त्री भोजन और धन में अर्थ और काम में संतोष करें, परंतु ज्ञान साधन, उपासना और दान देने में संतोष वृत्ति न रखें। और भी अस्पष्ट रूप में अर्थ और काम संबंधी मानव जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति अपने वर्ण के निर्देशानुसार करें, परंतु ज्ञान साधन, उपासना और दान अपनी योग्यता के अनुसार किया जा सकता है। यदि किसी में विशेष योग्यता हो, वह उसे समाज कल्याण तथा आत्म कल्याण में नियोजित करे। हिंदू संस्कृति के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था, जहाँ एक ओर लौकिक आकांक्षाओं को घटाकर मनुष्य को पूर्ण अपरिग्रह की ओर ले जाती है, वहीं दूसरी ओर पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद और पूर्ण शक्ति का भोक्ता बनाने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। महात्मा गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का दर्शन कुछ प्राकृतिक नियम ही है। उन्होंने लिखा है कि वर्ण व्यवस्था एक सहज ही क्रियाशील तथा स्वाभाविक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य उचित व्यक्ति को उचित पेशे में लगाए रखना है, क्योंकि सभी व्यक्ति शारीरिक व मानसिक दृष्टि से समान नहीं होते हैं। वर्ण के नियम का अर्थ यह है कि धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों के वंशानुगत पेशों को अपनाएगा, जहाँ तक कि वह मौलिक नैतिकता के नियम के विरुद्ध नहीं है। वह अपनी आजीविका का उपार्जन उसी पेशे से करेगा, इससे वह संपत्ति भले ही न जोड़ पाए, परंतु अपनी न्यायोचित आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उसके पास जो भी धन शेष रह जाएगा, उसे जन कल्याण के लिए व्यय करेगा। वर्ण द्वारा निर्धारित पेशों को अपनाने के साथ साथ अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार का भी ज्ञान अर्जन का अधिकार व्यक्ति को है। वर्ण व्यवस्था यही बतलाती है कि और वर्ण व्यवस्था का यही अनहित मूल दर्शन भी है। हेडिंग: वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस भांति हुई है, इस व्यवस्था में विद्वानों के मत भेद में है। यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत अलग अलग विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किए। उनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना हम यहाँ करेंगे। पहला, परंपरागत सिद्धांत, ट्रेडिशनल थ्योरी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में परंपरागत सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को समझने के लिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित विवरण को स्वीकार करता है। इसके अनुसार विश्व पुरुष के शारीरिक अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। उस प्रभु के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पदों से शूद्रों को उत्पन्न किया। मनु के अनुसार इन वर्णों की उत्पत्ति लोक वृद्धि के लिए है। स्मरण रहे कि शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का तात्पर्य यह नहीं कि वे अंग वास्तव में मनुष्य को जन्म देने की योग्यता को रखते हैं। यह पूर्णतया प्रतीकात्मक वर्ण है और अंगों की उच्चता के अनुसार वर्णगत उच्चता को दर्शाता है। साथ ही प्रत्येक अंग का पूरे शरीर के अस्तित्व में एक विशेष कार्य होता है। उसी प्रकार प्रत्येक वर्ण का भी समाज के अस्तित्व में एक कोई न कोई कार्य होता है। चूंकि मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी जाती है, इस कारण ब्राह्मणों का कार्य मुख से ही संबंधित है, अर्थात उनका परम कर्तव्य लोगों को ज्ञान और उपदेश देना है। बाहु शक्ति का घोतक है, अतः क्षत्रियों का मुख्य कार्य शक्ति के बल पर मानव जाति की रक्षा करना है। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति जांग से हुई है और इस कारण उसका कार्य व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, क्योंकि समाज के अस्तित्व के लिए व्यापार और वाणिज्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर के अस्तित्व के लिए जांग, जिसका कि कार्य भोजन को पचाना है। अंत में पैर का कार्य पूरे शरीर को गतिशील बनाए रखते हुए उनकी सेवा करना है। और चूंकि शूद्रों की उत्पत्ति विश्व पुरुष के पैरों से मानी जाती है, इस कारण शूद्र सेवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार समाज के विभिन्न समूहों में श्रम विभाजन द्वारा समाज के कार्यों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ही विश्व पुरुष ने वर्णों की सृष्टि की। पर जिसकी एक वर्ण दूसरे पर अनावश्यक अधिकार न पा सके, इस उद्देश्य उन्होंने किसी भी एक वर्ण को सर्वशक्तिमान नहीं बनाया। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण बौद्धिक शक्ति का तो अधिकारी है, पर शासन तथा अर्थ शक्ति से वंचित है। यही बात अन्य वर्णों पर भी लागू होती है। दूसरा, रंग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कलर। महाभारत में भृगु ऋषि ने भारद्वाज को वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार मनुष्यों की त्वचा के विभिन्न रंगों को ही बताया। उनके अनुसार ब्रह्मा ने पहले पहल केवल ब्राह्मणों की सृष्टि की थी, पर इसके बाद त्वचा के विभिन्न रंगों के आधार पर अन्य तीन वर्णों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की भी उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों का रंग सफेद, क्षत्रियों का रंग लाल, वैश्यों का रंग पीला और शूद्रों का रंग काला होता है। यही स्वाभाविक है और यदि ऐसा न हुआ तो वास्तव में अप्राकृतिक अव्यवस्था को दर्शाता है। अतः यदि कोई ब्राह्मण काले रंग का है या कोई शूद्र गोरे रंग का है तो ये दोनों सांप से भी भयंकर और खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। उनका कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आज कोई भी वैज्ञानिक इस मत से सहमत नहीं होगा, फिर भी भृगु का वर्ण का सिद्धांत रंग पर आधारित है। भृगु ऋषि के इस सिद्धांत के प्रति शंका प्रकट करते हुए भारद्वाज मुनि ने पूछा था कि हजारों भेद हो सकते हैं तो फिर समाज को केवल चार वर्णों में विभाजित क्यों किया गया। इस शंका का समाधान करते हुए भृगु ऋषि ने कहा कि धर्म कि रंग का सिद्धांत त्वचा के रंग से उतना अधिक संबंधित नहीं है जितना कि कर्म और गुण से। दूसरे शब्दों में विभिन्न वर्ण के रंग से उनकी त्वचा या खाल का नहीं अपितु कर्म और गुण का रंग प्रकट होता है। उदाहरणार्थ जो लोग भोग में अधिक आनंद पाते थे, कठोरता व क्रोध का गुण जिनमें निहित था, जो वीरता के गुण से संपन्न थे तथा जो अपने धर्म के प्रति उदासीन थे, इस प्रकार के लाल या लोहित गुण अर्थात राज प्रधान व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण के कहलाए। उसी प्रकार जो लोग अपने दिज धर्म से उदास हो, खेती बाड़ी पशुपालन आदि कार्यों में लग गए, वे वैश्य कहलाए, क्योंकि इन लोगों में पीत गुण अर्थात तमो मिश्रित रजा गुण विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। उसी प्रकार के लोग जो अपना धर्म छोड़कर असत्य बोलने लगे, अन्य प्राणियों को सताने लगे, जो प्रतिलोभ की लालसा से भरे थे, इस प्रकार के श्याम या कृष्ण गुण अर्थात तमा प्रधान व्यक्ति शूद्र कहलाए। इस प्रकार भृगु ऋषि के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सृष्टि की थी जो कि द्विज कहलाते थे, पर बाद को इन्हीं द्विज के विभिन्न सदस्यों में अलग अलग रंग गुण विकसित हो गए, तो इन रंगों या कर्म गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्णों में विभाजित कर दिया गया। तीसरा, कर्म तथा धर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फंक्शन एंड रिलीजन। वर्ण उत्पत्ति को समझने के लिए कर्म व धर्म के सिद्धांत का भी सहारा लिया जाता है। कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का ही एक अभिन्न अंग है। समाज व्यवस्था को तभी बनाए रखा जा सकता है जबकि तत्कालीन समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के विभिन्न अंगों में कार्यों का उचित विभाजन तथा नियमन हो। वैदिक युग में वर्णों की उत्पत्ति इसी आधार पर हुई थी। उस समय के समाज की चार आधारभूत आवश्यकताएँ थीं: पठन पाठन, धार्मिक तथा बौद्धिक कार्यों की पूर्ति, राज्य व्यवस्था का संचालन तथा समाज की रक्षा, सामाजिक क्रियाओं की पूर्ति तथा सेवा। समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक था कि समाज को कुछ निश्चित श्रेणियों में बांटकर कर्मों या नियमन व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती। इसी उद्देश्य से चार वर्णों की सृष्टि की गई जिससे प्रत्येक श्रेणी अपने कर्मों का निष्ठा से पालन करें। इस उद्देश्य कर्मों का पालन ही प्रत्येक श्रेणी का धर्म अर्थात कर्तव्य बन गया। यह बात उसके सदस्यों में कूट कूट कर भर दी गई। प्रत्येक वर्ण द्वारा निर्धारित कर्म या कर्तव्य वर्ण धर्म कहलाया। अतः समाज व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए धार्मिक व्यवस्था के रूप में कर्मों के विभाजन के फलस्वरूप ही समाज में वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। इस कर्म सिद्धांत का दूसरा रूप भी हो सकता है और वह यह है कि हिंदुओं में यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति का अपना कर्म ही उसके जीवन की स्थिति व दशा को निर्धारित करता है। इस जीवन में वह जो कुछ है वह उसके पिछले जीवन के कर्मों का प्रतिफल है और उसके अगले जीवन में वह जो कुछ होगा वह उसके वर्तमान जीवन के कर्मों का ही फल है। अतः अपने जीवन के कर्मों के अनुसार ही वह एक व्यक्ति विशेष परिवार में जन्म लेता है और उसे जीवन संबंधी कुछ विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। बहुत कुछ एक सी जीवन संबंधी परिस्थितियों को उपभोग करने वाले व्यक्तियों में से ही एक वर्ण वर्ग की सृष्टि हुई है। एक वर्ण के सभी सदस्य अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। इसका कारण यह है कि वह स्थिति उनके ही पिछले जीवन के कर्मों का प्रतिफल है। साथ ही प्रत्येक सदस्य अपनी वर्तमान स्थिति में रहते हुए समाज द्वारा निर्धारित कर्मों या कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करता है क्योंकि इन कर्मों या कर्तव्यों को ईमानदारी से करने पर ही अगले जन्म में उनकी स्थिति में सुधार होने की आशा है। कर्म का यह सिद्धांत इस रूप में अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में कौशिक मुनि की कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। कौशिक मुनि ने एक दिन एक धार्मिक ब्याध को मांस बेचते हुए पाया और आश्चर्य में होकर यह प्रश्न किया, इतना विद्वान होते हुए भी यह मांस क्यों बेच रहा है। इस पर ब्याध ने उत्तर दिया, हे दिच, मैं अपने वर्ण का कर्म कर रहा हूँ और इस प्रकार उसने उस धर्म का पालन कर रहा हूँ जिसके लिए भगवान ने मुझे पैदा किया है। मैं अपने वर्ण धर्म का पालन करके ही अपने से ऊँचे और नीचे वर्ण वाले व्यक्तियों की सेवा कर सकता हूँ। भाग्य बलवान होता है, पूर्व जन्म के कर्मों को फल उसके परिणामों को मिटाना बड़ा मुश्किल है। जो कर्म मैं इस जन्म में कर रहा हूँ वह पूर्व जन्म के कार्यों का ही फल है। जो अपने वर्ण के धर्म का ठीक से पालन करता है उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्मों के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था की सृष्टि हुई है।